हाय फ्रेंड्स, आज के मंथन में हम एक और महान व्यक्ति को याद करेंगे जिन्होंने अपनी पूरे जीवन को झोंक दिया हमारे देश दुनिया को बेहतर बनाने में, जिन्होंने अपनी पूरी शाही अपनी कलम घिसा दी एक बेहतर दुनिया के निर्माण में। जब भी मैं उनके बारे में सोचता हूँ तो मुझे कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं। मुझे ये याद आता है जैसे वो कह रहे हों, इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह हम ही से आएगी, वो सुबह हम ही से आएगी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप समझ ही गए हैं, मैं बात कर रहा हूँ सद्दात हसन मंटो की, जो जन्मे 11 मई 1912 को समराला पंजाब में पपरावट गांव में। वो ज़्यादातर उर्दू में कहानियाँ लिखते थे। उन्होंने फिल्म और रेडियो के लिए पटकथाएँ लिखी, पत्रकारिता की और कई संस्मरणों के लिए भी जाने गए। मंटो का नाम यूँ तो भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में ज़्यादा लिया जाता है, पर मैं उनको वर्ल्ड लिटरेचर का एक अहम हिस्सा मानता हूँ। वो गोर्की, प्रेमचंद, टॉल्स्टॉय, दोस्तोयेवस्की, मुक्तिबोध, चेखोव और दुनिया के बड़े बड़े कहानी लेखकों में गिने जा सकते हैं। मंटो का अंदाज़े बयां बिल्कुल अलग था और हम उन्हें गालिब, मीर और शेक्सपियर से भी कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपको कहानी की ताकत को समझना है तो आपको मंटो की कहानियाँ सुननी चाहिए। वो डॉक्टर और टीचर की तरह हैं जो आपकी चेतना को एकदम बदलते हुए नज़र आते हैं। मंटो यूं तो हिंदुस्तान में पैदा हुए, भारत में पैदा हुए, पर वो आज़ादी के बाद 1947 के बाद वो पाकिस्तान चले गए और लाहौर में उन्होंने अपना जीवन गुजारा। पर उन्होंने किसी को नहीं बख्शा, उन्होंने नफ़रत को ऐसी शक्ल दी जिससे सबको नफ़रत हो जाए। साहित्य के बड़े से बड़े जानकार भी ये कहते हैं कि अगर आपने मंटो को नहीं पढ़ा तो किसी को भी नहीं पढ़ा। मंटो केवल 42 साल ही इस धरती पर रह पाए और सब लोग ये समझते हैं कि अमन शांति की हवा उन्हें और मिलती तो वो अपनी लेखनी से इस दुनिया को और चमका सकते थे। आज के युवाओं को खासकर उनकी कहानियाँ बहुत लगाव से पढ़नी चाहिए, क्योंकि यदि हम ये नहीं समझ सकते कि हमारा राष्ट्र किस हिंसा की बुनियाद पर बना है तो हम वास्तव में समझ नहीं पाएंगे और बार बार हम लड़ाई की तरफ आकर्षित होंगे और लड़ाई में कोई नहीं जीता, लड़ाई में सिर्फ और सिर्फ मौत जीतती है। दोस्तों, मंटो अपनी लेखनी के कारण कई बार विवादों में आए, उनके ऊपर कई बार मुकदमे भी चले। 3 बार उन्हें इंडिया में मुकदमों का सामना करना पड़ा। जब वो पाकिस्तान गए तो वहाँ भी जो ऑर्थोडॉक्स फोर्सेस हैं उन्होंने उनके ऊपर कई बार मुकदमे किए गए, पर वो उन्हें कभी इसके लिए सज़ा नहीं हुई। मंटो पर कई बार फिजिकल अटैक्स भी हुए। एक बार सुनने में ये आता है कि फिल्म अभिनेता अशोक कुमार ने उन्हें एक भीड़ से बचाया था। वास्तव में मंटो किसी सरहद, देश और धर्म के लिए बने ही नहीं थे। उन्होंने एक धार से, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या खालिस्तानी हो, उन पर तंज कसे, उन द्वारा फैलाई जाने वाली हिंसा को, नफ़रत को एक्सपोज किया। मंटो एक बड़े परिवार में पैदा हुए और उनके पिता एक स्थानीय अदालत में जज थे, पर उन्होंने इसके बावजूद ज़रूरतमंदों और आम आदमी की तकलीफ़ों को समझा और अपनी कहानियों में उन्हें जगह दी। मंटो ने 1934 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीए की पढ़ाई शुरू करी, पर सबसे बड़ा मोड़ उनके जीवन में जब आया जब वो मिले अब्दुल बारी अलिग से, जो कि एक स्कॉलर थे, जो जिन्होंने कहानियाँ लिखने के प्रति उनमें एक रुझान पैदा किया। मंटो पढ़ने के बहुत शौकीन थे और उन्होंने बहुत सारे रशियन और फ्रेंच ऑथर्स को पढ़ा और विक्टर हुगो की लास्ट डे ऑफ ए कंडेम्ड मैन को भी ट्रांसलेट किया। जिस प्रकार वो इस दुनिया को देखते थे, वो जल्द ही इंडियन प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन से जुड़े और अली सरदार जाफरी के साथ मिलकर उन्होंने कई बार अलग अलग लेख लिखे। मंटो एकदम अपने पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और सबको ये लगता है कि मंटो तो उनका दोस्त है, महबूब है। वास्तव में उम्र किसी भी रिश्ते में बाधा नहीं होती। जब 18 जनवरी 1955 को उनकी मृत्यु हुई तो डॉक्टर्स ने बताया कि लिवर सिरोसिस उनकी मौत का कारण था, पर यदि हम उनकी कहानियों में झांक कर देखते हैं तो लगता है कि वो दो मुल्कों के बीच आपसी लड़ाई, बढ़ती हुई नफरत और धर्म की राजनीति से काफ़ी खौफजदा थे, काफ़ी दुखी थे। हम जानते हैं कि अंधेरा और संकट बढ़ जाने पर, गहरा हो जाने पर सभी परिंदे, भटके हुए लोग घर आ जाते हैं। मंटो आज जहाँ भी हैं वो ये सोच रहे होंगे कि इतना अंधेरा और नुकसान होने पर भी इंसानी दुनिया के लोग समझते क्यों नहीं, वो घर क्यों नहीं लौटते। यदि हम उनकी विरासत को देखें तो भारत, पाकिस्तान और दुनिया के अनेक हिस्सों में मंटो की कहानियों पर बहुत सारे टीवी प्रोग्राम्स और नाटक खेले गए हैं। पाकिस्तान की सरकार ने उनके नाम से एक डाक टिकट जारी किया और निशान इम्तियाज, जो कि वहाँ की सबसे बड़ी सिविलियन ऑनर है, उससे उसे नवाजा। दोनों मुल्कों में, पाकिस्तान में भी मंटो के नाम से एक फिल्म बनी और 2018 में भी इंडिया में भी नंदिता दास और नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मिलकर बॉलीवुड में मंटो के नाम से एक फिल्म बनाई। 2018 में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने 100 ऐसे साहित्यिक कहानियों की लिस्ट बनाई जिसमें टोबा टेक सिंह को शामिल किया गया, जिन्होंने अपनी कंटेंट और फॉर्म से इस दुनिया को बदल डाला। उस लिस्ट में होमर और वर्जीनिया वुल्फ भी शामिल थे। मंटो के व्यंग, जिसमें चचा के नाम मंटो के खत, नेहरू के नाम मंटो का खत, आत्मकथा मैं क्यों लिखता हूँ, और कहानियाँ जैसे कि खोल दो, टिटवाल का कुत्ता, टोबा टेक सिंह, ठंडा गोश्त, बू, सियाह हाशिए, इनके कारण मंटो हमारे दिल में, जहन में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। आइए ज़िक्र करते हैं उनके कहानी टिटवाल का कुत्ता। इस कहानी में बेशक जो स्टोरी है वो एक कुत्ते के इर्द गिर्द घूमती है। इसमें मंटो एक कुत्ते की लाश को एक सिंबल और मेटाफर बनाकर जंग और लड़ाई की असलियत या उसके असली रूप के बारे में हमें बताते हैं। एक कुत्ता जिसका नाम झुनझुन है, अपने गले में एक पट्टा लटकाकर अपने लिए जंग के समय में एक सुरक्षित जगह ढूंढ रहा है। वह पाकिस्तान की तरफ जाता है तो वहाँ के सैनिक ऐसा सोचते हैं कि जैसे उसका नाम कोई सीक्रेट कोड है और उसको अपने पास रखने से कोई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। भारतीय सेना की तरफ से भी लोग उसे खतरा ही मानते हैं और इस प्रकार उसकी हत्या हो जाती है। झुनझुन की लाश उन हजारों लाखों इंसानी परिवारों की मौत का एक जिंदा सिंबल दिखाई देती है, जिन्होंने पार्टीशन के दौरान और उसके बाद होने वाली लड़ाइयों में अपनी ज़िंदगी खोई। अगर हमने कहानी खोल दो का जिक्र नहीं किया तो आप शायद बंटवारे की हैवानियत का कोई अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। खोल दो कहानी अमृतसर की एक स्पेशल ट्रेन की कहानी है, जो जब मुगलपुरा पहुंचती है तो रास्ते में कई आदमी मारे जाते हैं, अनेक आदमी जख्मी होते हैं और कुछ इधर उधर भटक रहे होते हैं। ये कहानी है सकीना की, जिसकी माँ मर चुकी थी। उसने सिराजुद्दीन, जो उस लड़की के पिता थे, की आँखों में आंखें डालकर ये कहा था कि मुझे छोड़ दो और सकीना को लेकर जल्दी यहाँ से भाग जाओ। सकीना उसके साथ ही थी, दोनों नंगे पांव भाग रहे थे। सकीना का दुपट्टा गिर पड़ा था, उसे उठाने के लिए उसने रुकना चाहा था। सकीना ने चिल्लाकर कहा था, अब्बा जी छोड़िए, लेकिन उसने दुपट्टा उठा लिया था। यह सोचते सोचते उसने अपने कोट की उभरी हुई जेब की तरफ देखा और उसमें हाथ डालकर एक कपड़ा निकाला। सकीना का वही दुपट्टा था, लेकिन सकीना कहाँ थी? सकीना को किडनैप कर लिया गया था और वो शायद संकट में थी। कई दिन गुजर गए, सिराजुद्दीन को सकीना की कोई खबर ना मिली। वो दिन रात अलग अलग कैंपों और दफ्तरों के चक्कर काटता रहता, लेकिन कहीं भी उसकी बेटी का पता ना चला। फिर एक दिन उसे खबर मिली कि उसकी बेटी एक अस्पताल में एडमिट है और वो उस तरफ दौड़ा। उसने धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम बढ़ाए और उसी कमरे की तरफ जाने लगा जहां उसे पता लगा, जहां एक स्ट्रेचर था जिस पर एक लाश जैसी चीज़ पड़ी थी। सिराजुद्दीन छोटे छोटे कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ा। कमरे में अचानक रोशनी हुई। सिराजुद्दीन ने लाश के जर्द चेहरे पर चमकता हुआ तिल देखा और चिल्ला पड़ा, सकीना। डॉक्टर जिसने कमरे में रोशनी की थी ने पूछा, क्या हुआ? सिराजुद्दीन के हलक से सिर्फ इस कदर आवाज़ निकली, जी मैं इसका बाप हूँ। डॉक्टर ने स्ट्रेचर पर पड़ी लाश की नब्ज़ टटोली और सिराजुद्दीन से कहा, खिड़की खोल दो। सकीना के मुर्दा जिस्म में जुम्बिश हुई। बेजान हाथों में उसने इजार बंद खोला और सलवार नीचे सरका दी। बूढ़ा सिराजुद्दीन खुशी से चिल्लाया, जिंदा है मेरी बेटी, जिंदा है। दोस्तों, मंटो का भारत से बहुत गहरा रिश्ता है। हालांकि वो पार्टीशन के बाद लाहौर चले गए, पाकिस्तान चले गए, पर उनकी फ़ैन फॉलोइंग इंडिया में कभी कम नहीं हुई। ये जानकर आपको खुशी होगी कि जब 2012 में मंटो की तीनों बेटियां पपरोड़ा गांव में अपने पिता की विरासत को देखने के लिए आई तो पूरे गांव ने ढोल बजाकर, जैसे उनके घर का परिवार का ही कोई आदमी आया हो, उनका स्वागत किया। उन्हें अमृतसर, जलंधर और दिल्ली में कई जगह उनको लोगों ने सर माथे पर बिठाया। जब वो दिल्ली में जेएनयू में एक कमेटी रूम में मुझसे मिली तो चारों तरफ जैसे पैर रखने की जगह ना थी। सब लोग एक झलक के लिए तरस रहे थे। वो ढूंढ रहे थे मंटो के निशान, मंटो की कलम की ताकत और मंटो की इस देश दुनिया के बारे में समझ को। जेएनयू के उस कमेटी रूम में जब उन तीन बेटियों को हम सुन रहे थे तो लग रहा था कि हम इतिहास में झांक कर ये पूछ रहे थे अपने आप से और इस समय से कि हमने इतने संघर्ष से, इस बंटवारे से, इतनी लड़ाइयों से क्या क्या पाया, हमने क्या हासिल किया, क्या हम वास्तव में सिविलाइज्ड हैं, क्या आने वाली कौमें हमें सभ्य कह पाएंगी। दोस्तों, हमारी गुजारिश है आपसे कि सिर्फ ये वीडियो ना देखें और सिर्फ उनकी फिल्म देख के ही सेटिस्फाई ना हो जाएं, बल्कि मंटो के जूतों में खड़े होकर इस दुनिया को देखें और महसूस करें कि लड़ाई में किसकी जीत होती है, बंटवारों में कौन जीतता है, धर्म राजनीति या धर्म की राजनीति से किसको फ़ायदा होता है। आज जब हम कोरोना काल में अपने मजदूर भाइयों को सड़कों पर, रेलवे ट्रैक पर ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ते हुए देखते हैं तो मंटो की याद ताज़ा हो जाती है। मंटो अगर होते तो वो कोरोना की दवाई के साथ साथ दंगे, दहशत, भूखमरी और गरीबी की भी दवाई ढूंढने की कोशिश करते। मंटो की कहानियों में एक तीखा असर है, उनको पढ़ने से एक झटका सा लगता है, पर एक बात पक्का है कि अगर हम में थोड़ा सा भी ज़मीर है तो उन कहानियों को पढ़ने के बाद हम बेहतर इंसान होकर निकलते हैं।